नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल में नंदकिशोर सुमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का लोकार्पण किया। कहा, सरकार देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत ने कहा, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक वो आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। इसराइल ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के ईरान के प्रमुख गैस क्षेत्र पर हमला न करने की घोषणा के एक दिन बाद ईरान पर हमले फिर शुरू किए। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। और फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में आज शाम महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नात्सुकी निदेरा से और मालविका बंसोड़ का सामना ईशा रानी बरुआ से होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हों। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल के नंदकिशोर सुमानी ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का लोकार्पण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार आज स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के वास्ते निरंतर प्रयास कर रही है।
केंद्र सरकार देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसे ऐतिहासिक योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैंसर के इलाज को भी कवर किया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लाभ मिल रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए देश भर में नए एम्स, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कैंसर आज एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि समय पर निदान और उन्नत उपचार तक पहुंच मरीजों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल गरीबों का इलाज कर रहा है।
ये संतोष का विषय है कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल धन के अभाव के कारण किसी भी रोगी को उपचार से वंचित नहीं किया जाए के प्रेरणादायक सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। ये विचार सच्चे अर्थ में करुणामय चिकित्सा सेवा की भावना को व्यक्त करता है।
इससे पहले आज सवेरे राष्ट्रपति ने प्रेमानंद जी महाराज आश्रम का दौरा किया। उन्होंने वृंदावन में नीब करोड़ी बाबा की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वात्सल्य ग्राम का दौरा करेंगी। ये बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए काम करने वाला एक कल्याणकारी संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का ऊर्जा परिवर्तन व्यावहारिक नीतिगत रूपरेखा और आत्मनिर्भरता की दिशा में स्पष्ट प्रयासों से प्रेरित है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लेख देश के ऊर्जा क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा को रेखांकित करता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक निर्णायक अध्याय लिख रहा है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में चल रहे विकास प्रयासों के तहत सरकार सतत अवसंरचना और बेहतर संपर्क को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने राज्य के कृषि मंत्री के अच्चानायडू के साथ कोटा बोम्माली मंडल के हरिश्चंद्रपुरम रेलवे स्टेशन पर विशाखापट्टनम गुनपुर तेज यात्री ट्रेन के परीक्षण ठहराव को हरी झंडी दिखाने के बाद ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये नया ठहराव आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए यात्रा की सुविधा बढ़ाएगा और जिले में रेल संपर्क को मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन मतदाताओं की सूची की जांच के बाद विवादित मतदाताओं की पहली पूरक सूची आज प्रकाशित की जा सकती है। गहन पुनरीक्षण के बाद 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में 60 लाख से अधिक नाम विचाराधीन थे। पूरक सूची जारी होने से पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने कल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और एसआईआर प्रक्रिया में शामिल न्यायाधीशों तथा न्यायिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जलसंधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक वो आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को संधि संबंधी चिंताएं उठाने से पहले मानव जीवन का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया।
India entered into the Indus waters.
भारत ने 65 साल पहले सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान ने सद्भावना का दुरुपयोग करते हुए भारत के साथ 3 युद्ध किए और उस पर अनेक आतंकी हमले करवाए। हमारे धैर्य और उदारता से पाकिस्तान का रवैया नहीं बदला। आखिरकार हमें ये घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ये संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि आतंकवाद का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान सभी तरह के आतंकवाद को समर्थन देना नहीं कर देता।
इसराइल ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के ईरान के प्रमुख गैस क्षेत्र पर हमला न करने की घोषणा के एक दिन बाद ईरान पर हमले फिर शुरू कर दिए हैं। इसराइल ने ईरान के फारसी नववर्ष नवरोज के दौरान आज तेहरान पर हवाई हमले किए। राजधानी के आसपास विस्फोटों की खबरें आई हैं। इस बीच ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नववर्ष नवरोज और ईद उल फित्र के बीच बढ़ते संघर्ष तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर व्यापक हमलों ने उत्सवों की रौनक फीकी कर दी है।
पश्चिम एशिया संघर्ष का सीधा असर ऊर्जा आपूर्ति और दैनिक जीवन दोनों पर पड़ रहा है। कुवैत में आज सुबह मीना अल अहमदी और मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए जिससे कई परिचालन इकाइयों में आग लग गई। अधिकारियों ने बाद में बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। उधर लेबनान में बेरूत के भीतरी इलाकों में हवाई हमले किए जा रहे हैं जिनमें प्रमुख सरकारी स्थलों के पास के क्षेत्र भी शामिल है। इसराइल में हाइफा में एक तेल रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी गई जो देश के घरेलू ईंधन उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कतर के रास लफान संयंत्र को व्यापक क्षति पहुंची है जिससे तरलीकृत प्राकृतिक गैस के निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात में मिसाइल हमलों और मलबा गिरने के बाद हबशान गैस संयंत्र और बाब तेल क्षेत्र सहित प्रमुख संयंत्रों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इस बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य लगभग बंद है जिससे तेल और ऊर्जा आपूर्ति बाधित है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
बलूच नेशनल मूवमेंट ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बलूचिस्तान में कथित रूप से मानव अधिकारों के दुरुपयोग पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में बलूच नेशनल मूवमेंट की प्रतिनिधि माहरा बलूच ने लोगों के जबरन लापता होने, हत्याओं और अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदियों का मुद्दा उठाया। सुश्री माहरा बलूच ने बताया कि केवल वर्ष 2025 में ही 1355 लोग जबरन लापता किए गए और 225 लोगों की हत्या कर दी गई। अफगानिस्तान में सशस्त्र बलों के प्रमुख फसीहुद्दीन फितरत ने आज पाकिस्तानी सेना पर ड्यूरंड रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत हुई। श्री फितरत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान द्वारा निरंतर संघर्ष विराम उल्लंघन से तालिबान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए त्वरित उपाय कर रही है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने बताया कि अधिकारियों से नुकसान का तत्काल आकलन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने को कहा गया है। श्री चौहान ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ की संभावना को देखते हुए सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि देश में फिलहाल गेहूं, धान और चावल का पर्याप्त भंडार है और इस मौसम में बड़ी मात्रा में पैदावार होने की आशा है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि का अनुमान है। मछुआरों को 24 मार्च तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 3 दिन से ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में बिजली और सड़क सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।
बीते 3 दिनों से जारी वर्षा और हिमपात के चलते कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुल्लू शहर के मठ इलाके में भूस्खलन के चलते इनर अखाड़ा बाजार के आधा दर्जन मकानों को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया है। अटल टनल रोहतांग के आसपास करीब 3 फुट तक हिमपात हो चुका है और ये टनल फिलहाल सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। इधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर और तीसा में भी बर्फबारी और वर्षा से बिजली आपूर्ति बाधित है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 24 घंटों के दौरान देश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात, निचले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में विमानन सुरक्षा और दिशा निर्धारण मानकों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। प्राधिकरण ने कहा है कि उसकी उड़ान निरीक्षण टीम ने रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे में महत्वपूर्ण हवाई दिशा निर्धारण प्रणाली का निरीक्षण किया। प्राधिकरण ने बताया है कि ये प्रणाली विमान उतरते समय और विशेष रूप से कम दृश्यता वाली स्थितियों के दौरान सटीक मार्गदर्शन के लिए अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर लोगों से मुख की बेहतर स्वच्छता की आदतें अपनाने का आग्रह किया है। श्री नड्डा ने मुस्कान को स्वस्थ और उत्साही बनाए रखने के लिए उचित ब्रशिंग, मीठे खाद्य पदार्थों का सीमित सेवन और नियमित दंत जांच जैसे सरल उपायों के महत्व पर बल दिया। विश्व गौरैया दिवस आज समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। ये दिवस गौरैया की आबादी में तेजी से आ रही गिरावट को लेकर जागरूकता बढ़ाने संबंधी वार्षिक प्रयास को दर्शाता है। इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के सहयोग से नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2010 में शुरू हुआ यह दिवस इस छोटी चिड़िया के लिए बढ़ते खतरों का संकेत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को नमन किया है। उन्होंने कहा कि देवी मां सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मां अंबे के प्रति भक्ति मन को अपार शांति और ऊर्जा से भर देती है। श्री मोदी ने मां अंबे को समर्पित एक भक्ति गीत भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर में लगभग 1% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 782 अंक बढ़कर 74,989 पर, जबकि निफ्टी 261 अंक बढ़कर 23,263 पर था। फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नत्सुकी निदायरा से, मालविका बंसोड़ का सामना हमवतन ईशा रानी बरुआ से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल में नंदकिशोर सुमाने ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का लोकार्पण किया। कहा सरकार देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत ने कहा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक वो आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। इसराइल ने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के ईरान के प्रमुख गैस क्षेत्र पर हमला न करने की घोषणा के एक दिन बाद ईरान पर हमले फिर शुरू किए। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।